9 नवंबर दिन भर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। जीत के बाद तलखी बुलाई, एकजुट होने की बात की।
To all Republicans and Democrats and Independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people.
दुनिया भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल बोली,
Wer dieses große Land regiert, mit seiner gewaltigen wirtschaftlichen Stärke, seinem militärischen Potenzial, seiner kulturellen Prägekraft,
पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ होंगे प्रोफेसर पुष्पेश पंत और मुक्तदर अहमद। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति चुनाव के अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर किया। जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें हिलेरी क्लिंटन ने फोन कर जीत के लिए बधाई दी। ट्रंप ने भी हिलेरी को चुनावी अभियान में कड़ी चुनौती देने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि लाखों मेहनती महिलाओं और पुरुषों ने अमरीका के बेहतर और उज्ज्वल भविष्य के लिए मतदान किया। उन्होंने अमरीकी सपनों के नवीनीकरण के लिए तत्काल कार्य करने का वादा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री समेत अंतर्राष्ट्रीय जगत से कई देशों ने ट्रंप को जीत के लिए बधाई दी। यूरोपीय यूनियन के दो बड़े अधिकारियों ने जल्द से जल्द एक शिखर सम्मेलन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि यह ट्रांस अटलांटिक यानी यूरोप और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यूक्रेन की संप्रभुता के खतरे और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटा जा सके। जर्मनी की राष्ट्रपति एंगेला मार्केल ने लोकतंत्र के मूल्यों, कानून के नियमों और मानवीय गरिमा के आधार पर ट्रंप से निकट सहयोग की पेशकश की है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि ट्रंप की जीत एक अनिश्चितता लेकर आई है, जिसके लिए पूरे यूरोप को एक होना होगा, जिससे उनकी बात सुनी जाए। फ्रांसवा ओलांद ने कहा,
Je le félicite comme il est naturel entre deux chefs d'État démocratiques.
मैं उन्हें बधाई देता हूं जो कि विश्व के दो लोकतांत्रिक नेताओं के लिए एक स्वाभाविक है। मैं हिलेरी क्लिंटन के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं, जिनके साथ ओबामा प्रशासन के दौरान मैंने काम किया। मेरा स्पष्टता के साथ ये दृष्टिकोण है कि ये अमरीकी चुनाव एक अनिश्चितता लेकर आया है। अमरीका फ्रांस का प्रमुख सहयोगी है और शांति, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मध्य पूर्व की स्थिति और आर्थिक संबंध जैसे मुद्दे दांव पर लगे हैं। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। काले धन के खिलाफ मंगलवार रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद आज भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लोग स्रोत पता कर जितना चाहें बैंकों में पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन ये बचने का कोई तरीका नहीं है, इसमें टैक्स से मुक्ति नहीं है। उस संबंध में जो देश का कानून होगा वो आप पर लागू होगा। गुरुवार से भारत के लोग अपने पुराने नोट बैंकों में जमा करवा कर 2000 और 500 के नए नोट ले सकते हैं। आज देश भर में ग्राहकों के लिए बैंक सेवा और एटीएम सेवाएं बंद हैं। चीन की अदालत ने पिछले साल एक वेयरहाउस में हुए धमाके के आरोप में केमिकल फैक्ट्री के प्रमुख को मौत की सजा दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। बिल्कुल अवाक कर देने वाली जीत। सारे अनुमान और परंपराएं धराशायी हो गई। सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए अमरीकी जनता ने एक पॉलिटिकल नोविस या कहा जाए राजनीतिक नौसिखिए को अपना 45वां राष्ट्रपति चुना है। इस चुनाव परिणाम की तुलना शायद 2004 के भारतीय संसदीय चुनाव से की जा सकती है, जब सभी उम्मीदों के खिलाफ शाइनिंग इंडिया और फील गुड के नारे को धता बताते हुए भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस के हाथ में सत्ता की कुंजी सौंपी थी। बहरहाल पहली बार किसी महिला को व्हाइट हाउस में घुसने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जीत के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बदले हुए शख्स नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान वो जिस भावना को बार बार नज़रअंदाज करते रहे, जीतने के बाद उन्होंने उसकी ही जोरदार वकालत की। अपने विजय भाषण में उन्होंने कहा कि अमरीकी जनता उन पर गर्व करेगी। ट्रंप बोले,
It's been what they call a historic event, but to be really historic, we have to do a great job.
इसको एक ऐतिहासिक क्षण कहा जा सकता है, लेकिन इसके सही मानों में ऐतिहासिक क्षण बनाने के लिए हमें बड़े काम करने होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हम बड़े काम करेंगे। मैं आपका राष्ट्रपति बनने का इंतज़ार कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि 2 या 4 या 8 साल बाद आप कहेंगे कि मुझको चुनकर आपको गर्व हुआ है। हमारा अभियान समाप्त हुआ, लेकिन हमारा काम तो अब शुरू हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने आगे कहा,
Ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions.
हमारा ये चुनाव प्रचार नहीं था, बल्कि ये एक महान और अविश्वसनीय आंदोलन था। इसमें वो लाखों पुरुष और महिलाएं काम कर रहे थे जो अपने देश से प्यार करते हैं और जो अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं। इस आंदोलन में सभी वर्ण, धर्म, पृष्ठभूमि और विचारधाराओं के अमरीकी शामिल हैं जो चाहते हैं कि हमारी सरकार लोगों की सेवा करे और हम लोगों की सेवा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास हिलेरी क्लिंटन का बधाई का फोन आया है। उन्होंने हिलेरी को कठिन प्रचार के लिए बधाई दी और अमरीकियों से एकजुट होने के लिए कहा।
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
अब समय आ गया है कि अमेरिका विभाजन के घावों को भरे। हमें साथ रहना है। पूरे देश के सारे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स से मैं कहना चाहता हूं कि हमें एकजुट लोगों की तरह सामने आना चाहिए। मैं इस देश के हर बाशिंदे से कहना चाहता हूं कि मैं सभी अमरीकियों का राष्ट्रपति होऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप। आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, ब्रजेश उपाध्याय के पास। वहां मौजूद है ब्रजेश। किस तरह से जीत अर्जित की डोनाल्ड ट्रंप ने, बताएं।
रेहान, आपको याद होगा रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जब क्लीवलैंड में हुआ था, उसके बाद मैंने कहा था कि व्हाइट हाउस की जीत का रास्ता एक तरह से रस्ट बेल्ट से होकर गुजरेगा, और काफी हद तक ट्रंप ने उसी रास्ते को चुना है। बहुत मुश्किल चैलेंज था उनके सामने। पूरे रिपब्लिकन तंत्र को चुनौती देते हुए सभी रिपब्लिकन राज्यों पर कब्जा करना, बैटल ग्राउंड स्टेट्स ओहायो, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना पर कब्जा करना, और वो उन्होंने किया, और डेमोक्रेट्स की जो दीवार है उसमें सेंध लगाना, जो उन्होंने विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में जीत हासिल करके की। 1984 और 1988 के बाद से कुछ किसी रिपब्लिकन ने वहां जीत नहीं हासिल की थी। तो उन्होंने वो सब कुछ किया जिसकी बदौलत उन्हें जीत मिल सकती थी। 28 राज्यों में जीत चुके हैं वो। वहीं हिलरी क्लिंटन को सभी डेमोक्रेटिक राज्यों को बचाते हुए बस 1 या 2 राज्यों में और जीत हासिल करनी थी, और वो नहीं कर पाई। सिर्फ 18 राज्य और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उनके खाते में गया है। काफी हद तक जो वर्जीनिया, जो जहां 2 हफ्ते पहले तक कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे ट्रंप, वहां उन्होंने बस 2 हफ्ते पहले कैंपेनिंग की है, और वहां का जो मुकाबला इतना कड़ा होने लग गया। आखिर में हिलरी जीती जरूर, लेकिन उसी से अंदाजा लगने लग गया था कि एक बहुत बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है।
ब्रजेश, सारे सर्वेक्षण बता रहे थे, आपसे भी जब हम बात कर रहे थे पिछले दिनों, आप कह रहे थे कि 3 या 4 पॉइंट का एज है हिलरी क्लिंटन को, लेकिन ये अपसेट कैसे हुई? ये एकदम सब कुछ पलट कैसे गया?
हाँ, वहां पर मैं एक बात और कह रहा था रेहान, कि 3 और 4 पॉइंट का की बढ़त है उनको, लेकिन जमीन पर जोश और उत्साह जो है वो ट्रंप की तरफ नजर आ रहा है। एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 8 साल पहले अमेरिका ने एक तरह से इतिहास रचा था एक काले राष्ट्रपति को चुनकर। 8 साल के बाद काफी हद तक उसका भी असर देखने को मिला है। मैं पिछले 1 साल में जहां जहां गया, एक खासा गुस्सा नजर आया ओबामा को लेकर, कई बार उनकी नीतियों से ज्यादा इस बात से कि एक काला आदमी व्हाइट हाउस में है। दूसरा, प्राइमरी चुनावों के समय से ही एक बदलाव की हवा थी अमेरिका में। बर्नी सैंडर्स जो हिलरी क्लिंटन को टक्कर दे रहे थे, उनका नाम भी ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना था, और वो आर्थिक असमानता को मुद्दा बनाकर जिस तरह से उभरे वो एक संकेत था। लेकिन हिलरी ने उस वक्त प्राइमरीज में जीत के लिए ओबामा की नीतियों को गले लगाया और उसके बाद वो ओबामा के तीसरे टर्म के लिए एक तरह से उम्मीदवार थी, पर उनके पास ओबामा वाला करिश्मा नहीं था। और ट्रंप ने बर्नी सैंडर्स के पैगाम को अपना बना लिया, साथ ही ग्लोबलाइजेशन, इमिग्रेशन के खिलाफ जो दुनिया के कई देशों में इन दिनों जो गुस्सा नजर आता है उसको अपना पैगाम बना लिया। और जैसा आपने शुरू में बताया वो क्लिप चलाया कि वो कह रहे थे कि मैंने मूवमेंट चलाया, और सही मायने में ये कैंपेन नहीं था जो आमतौर पर कैंपेन चलते हैं, ये सही मायने में उन्होंने एक तरह का मूवमेंट शुरू किया था। और आखिरी दिनों में जब उन्होंने कहा कि ये ब्रेक्सिट प्लस 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 होने जा रहा है, यानी बहुत सारे वोटर्स जो कह रहे हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे ट्रंप को, वो अंदर से वोटर वो वोट ट्रंप को डालने जा रहे हैं, और वो काफी हद तक सही निकला। हिलरी क्लिंटन एक तरह से एक एस्टैब्लिशमेंट की इंसाइडर उम्मीदवार बनकर के आई, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमरीकी ब्लू कॉलर जो वर्कर है उसके गुस्से को उभारा और उसका फायदा उठाया, उसके उनके बल पर वो व्हाइट हाउस में पहुंच रहे हैं।
ब्रिटिश, अब ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठेंगे, क्या चुनौतियां होंगी उनके सामने?
सबसे पहले तो रिहान, उन्होंने इतनी उम्मीदें जगा दी हैं अपने समर्थकों में, दीवार बनाने का वादा, मुसलमानों को बाहर करके अमेरिका को सुरक्षित करने का वादा, पुरानी स्टील मिलों को जिंदा करने का वादा, कई मुक्त व्यापार समझौतों को खत्म करने का वादा, जलवायु समझौते को रद्द करने का वादा, विदेश नीति में ईरान परमाणु समझौते को खत्म करने का वादा, नेटो देशों से पैसा लेने का वादा, आईसीएस को खत्म कर देने का वादा। ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, इन्हें पूरा करना इतना मुश्किल है या इन्हें लागू कर पाना इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। कि वो दीवार, मैं मेक्सिको के बॉर्डर के दीवारों पर के पास गया हूँ कि जहाँ पर, और बॉर्डर पेट्रोल के जो अधिकारी थे वो कहते थे कि संभव ही नहीं है यहाँ पर एक पूरा कंक्रीट की दीवार बना पाना, एक तो जो ट्रेन है ऐसा उसकी वजह से, और दूसरा जो जिस तरह से आवाजाही है लोगों को वो मुमकिन ही नहीं, और जितना उस पर खर्च होगा वो कह रहे हैं कि मेक्सिको पैसा देगा, इसका संभव ही नहीं है कि मेक्सिको उसका पैसा देने वाला। साथ ही एक दूसरी चीज है कि कांग्रेस के दोनों सदनों में अब रिपब्लिकन का बहुमत फिर से बरकरार है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो नौवां जज है वो बहाल अब बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो वो एक चीज उनके फायदे में है कि जो कंजर्वेटिव पार्टीज की जो चीजें हैं अबॉर्शन पर या गे मैरिज वगैरह पर जो उनके उनकी सोच है उसको वो लागू करवा सकने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं उनकी, और वो विभाजन और डिवाइसिवनेस के पैगाम पर जीत कर आए हैं, और अपनी तकरीर में उन्होंने बात की है फिर से एकजुट करने की, कैसे वो सामंजस्य बिठा पाएंगे ये देखने वाली
अच्छा
बात।
ब्रिटिश, बहुत संक्षेप में, हिलरी क्लिंटन कैंप से क्या खबर आ रही है, किस तरह से उन्होंने हार को लिया है?
अभी तक हिलरी क्लिंटन ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अब से थोड़ी देर में हमें खबर मिली है कि यहाँ के वक्त से न्यूयॉर्क के वक्त में, न्यूयॉर्क में इस समय में, और न्यूयॉर्क के वक्त से 9:30 बजे सुबह उनकी तरफ से कोई बयान आने वाला है, जहाँ वो अपने कुछ रिपोर्ट समर्थकों और रिपोर्टर्स से बात करने वाली है, तब हमें अंदाजा मिलेगा। लेकिन कल रात उन्होंने बधाई दे दिया है। और हाँ, ट्रंप ओबामा से कल मिलने जा रहे हैं व्हाइट हाउस में, और राष्ट्रपति ओबामा ने भी उन्हें बधाई दे दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद न्यूयॉर्क से ब्रजेश उपाध्याय आपका। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं प्रोफेसर पुष्पेश पंत को। जो सवाल मैंने ब्रजेश से पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ट्रंप लगातार पीछे चल रहे थे, एक भी मौका नहीं आया, शायद ही एक बार आया जब वो एक पॉइंट से आगे हुए ओपिनियन पोल में, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजी उनके हाथ लगी?
देखिए, मुझे लगता है जो ब्रजेश कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारी नज़र अटकी रही उन आंकड़ों पर जिसमें कितने अंक से एक प्रतियोगी दूसरे से पीछे है। जो ज़मीन में उत्साह का उफान था उसको आंकने की कोशिश कोई कर नहीं रहा था कि अमेरिकी मतदाता की नब्ज़ पर किसका हाथ है। मेरे ख्याल में शुरू से स्पष्ट था कि जितनी आसानी से बड़े बड़े महारथी दिग्गजों को रिपब्लिकन पार्टी के पछाड़ के ट्रंप उम्मीदवार बनने में सफल हुए थे, उससे ही उनकी कामयाबी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अमेरिका का जनमानस उनका समर्थन कर रहा है, एक ख़ास तरह का मिडिल अमेरिका वाला। तो मेरे ख्याल में हम लोग उलझे रहे सेफोलॉजिकल आंकड़ों में, जो अपने आप में एक व्यवसाय है, उद्योग है, तो हमसे ये चूक इसलिए हुई।
अच्छा, आप मानते हैं कि ये जो परिणाम है न सिर्फ हिलेरी क्लिंटन का रिजेक्शन है, बल्कि एक तरह से ओबामा की नीतियों का भी?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो बात ब्रजेश कह रहे थे वो कहीं ना कहीं आदमी को स्वीकार करने में हिचक होगी जो अपने को उदार और प्रगतिशील समझता है। एक नस्लवादी बैकलैश ये है निश्चित रूप से कि कैसे आधा मुसलमान आधा काला व्हाइट हाउस में बैठे हम पर राज कर रहा था, और जो इस तरह की बातें करता था कि आपका सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो बंदूकों पर लाइसेंस लगाया जाना चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए, कुछ सामाजिक सुरक्षा की बात होनी चाहिए, कुछ हेल्थ की बात होनी चाहिए। जो मैं कमाता हूँ मैं खर्च करता हूँ, मेरा अधिकार है, मैं जिसको चाहूँ गाली दूँ, फर्स्ट अमेंडमेंट हो, चाहे मेरे हाथ में बंदूक हो, वो मेरा शस्त्र रखने का अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अमरीकी क्रांति के साथ और अमरीकी गृहयुद्ध के साथ जो बातें जुड़ी हैं वो आज तक अमरीकी आदमी के मन से गई नहीं है। जो अमरीकी गोरा है, अमरीकी कट्टरपंथी नस्लवादी ईसाई है, जो अमेरिका की मैनिफेस्ट डेस्टिनी में यकीन रखता है, जिसको फ्रांसीसी समाजशास्त्री इंपीरियल रिपब्लिक कहते हैं, जो वियतनाम के लिए अमरीका जिम्मेदार रहा है, द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ अमेरिकन्स, जो हिरोशिमा नागासाकी के लिए जिम्मेदार रहा है, जो सत्ता परिवर्तन के लेकर प्राचीन हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की तबाही के लिए जिम्मेदार रहा है, उस अमरीकी को आप प्रगतिशील समझें, लिंगभेदी न्याय का पोषक समझें, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और उनका आना एक अमरीका का ज्वार है प्रतिक्रियावादी नस्लवादी जहालत का अहंकार।
आपसे बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप के किरदार, ट्रंप की कामयाबी, उनके बयान, उनके विवाद और निजी जिंदगी के किस्से सब मिलाकर एक मसालेदार और दिलचस्प कहानी बनाते हैं। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया आज ये जानने में दिलचस्पी दिखा रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हैं कौन। उनके जीवन पर नजर दौड़ा रहे हैं अमर शर्मा।
डोनाल्ड ट्रंप एक कामयाब अमरीकी कारोबारी हैं और उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी मध्य वर्ग भी उन्हें खूब पसंद करता है, जबकि उनकी कई नीतियां सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए है। ट्रंप 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में जन्मे थे। डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप ने रियल स्टेट में काफी कामयाबी हासिल की थी। ट्रंप की माँ स्कॉटलैंड से अमरीका पहुंची थी। 1959 में जब ट्रंप 13 बरस के थे, उनके पिता को उनके घर में स्विच ब्लेड नाम का हथियार मिला। बेटा बिगड़ न जाए इसलिए ट्रंप दंपति ने बेटे को पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क मिलिट्री स्कूल भेज दिया। ट्रंप वहां से पढ़कर 1964 में निकले, उसके बाद फोर्डम यूनिवर्सिटी, फिर 1968 में अमेरिका के मशहूर वाटन बिजनेस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। 70 के दशक में ही अपने पिता से पैसे लेकर ट्रंप ने भारी नुकसान में चल रहे कमोडोर होटल को $7 करोड़ में खरीदा और उसे दोबारा शुरू किया। ट्रंप का यह दाव बेहद कामयाब रहा, वो रातों रात करोड़पति बन गए थे। 1982 में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मशहूर ट्रंप टावर बनवाया। कहते हैं कि इसे बनाने में पोलैंड से गैर कानूनी तरीके से आए मजदूरों का बड़ा योगदान रहा था। ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों से आने वाले अप्रवासियों के विरोधी के तौर पर मशहूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी इसी इमारत में रहते हैं और यहीं से काम करते हैं। 90 के दशक में मार्ला मैपल्स नाम की महिला से अवैध संबंधों के चलते डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी इवाना ने उनसे तलाक ले लिया। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 7 दिसंबर 2015 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे विवादित बयान दिया था। उन्होंने साउथ कैरोलिना में एक चुनावी रैली में कहा कि मुसलमानों के लिए अमरीका के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाने चाहिए।
डोनाल्ड जे ट्रंप इज कॉलिंग फॉर ए टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन Of Muslims entering the United States.
मैं डोनाल्ड जे ट्रंप मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग करता हूं। जब तक कि इस देश के प्रतिनिधि ये पता नहीं लगा लेते कि आखिर देश में चल क्या रहा है, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप के शब्द, इस पर काफी हंगामा मचा था। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रंप की मुस्लिम विरोधी छवि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। ट्रंप ने मेक्सिको की सीमा पर एक दीवार बनाने का भी वादा किया है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें वो महिलाओं के बारे में अभद्र बातें करते सुने गए। ये वीडियो 2004 में एक टीवी शो द अप्रेंटिस की शूटिंग के दौरान का था। कई देशों के लोग ट्रंप को दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अपने तमाम विवादों के बावजूद 19 जुलाई 2016 को क्लीवलैंड में हुई पार्टी के सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने में कामयाब हो गए। अब अमरीकी नागरिकों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट देकर उन्हें अगला राष्ट्रपति बनाया है।
प्रोफेसर पांता, आपने सुना ट्रंप की एक तरह से कलरफुल लाइफ। इतने कलरफुल, अखाड़, मुस्लिम हेटर, बेबाक शख्सियत के मालिक होने के बावजूद वो अमरीकियों का दिल जीतने में कामयाब हो गए, क्या वजह थी?
देखिए, मुझे लगता है कि आज इस घड़ी में हम उनको एक्सेप्शन मान रहे हैं। क्या पुराने अमरीकी राष्ट्रपति इतने दिलफरेब, रंगीन मिजाज, आशिकाना नहीं रहे हैं? क्या कैनेडी के चर्चे मार्लिन मनरो के साथ नहीं होते थे? क्या FDR के कुछ मैत्री के संबंध नहीं आते थे? क्या हम ये भूल गए हैं कि कैनेडी परिवार के जितने उम्मीदवार थे उनमें टेड कैनेडी इसी कारण राष्ट्रपति भवन तक नहीं पहुंच पाए कि उनकी किससे भी रंगीन मिजाजी के मिजाज कुछ लड़कपन से ही आशिकाना वाले थे? क्या हम भूल गए हैं कि बिल क्लिंटन जो रोड्स स्कॉलर थे जब वो व्हाइट हाउस में सत्तारूढ़ थे तो मोनिका लुइंस्की नाम के एक इंटर्न के संग उनका एक अभद्र रिश्ता पर्दाफाश नहीं हुआ था जिसके लिए उन्होंने पश्चाताप जाहिर किया था? मुझे लगता है महाभियोग की कगार तक पहुँचे जो अमरीकी राष्ट्रपति हैं। और पहले कट्टरपंथी ये यही और नहीं है, सेनेटर मैकार्थी का जिक्र इनके नाम के साथ बार बार हो रहा है मगर उन्हीं सेनेटर मैकार्थी के जूनियर वकील क्या निक्सन नहीं थे? तो मुझे लगता है कि क्षमा कीजिएगा, जो जिसको घटिया दोयम दर्जे का राष्ट्रपति अभिनेता माना जाता था वो अमेरिका के सफलतम राष्ट्रपतियों में रोनाल्ड रीगन का शुमार होता है। अगर मुसलमानों के विरोध की बात आप कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियाँ उड़ाने की, तो बुश ने क्या कहा था जब 9/11 के बाद कि कागज़ के पर्चे को मैं चिथड़ा समझता हूँ, आई विल नॉट लेट द पीस ऑफ पेपर स्टैंड बिटवीन द होमलैंड सिक्योरिटी। तो 9/11 के हमले के बाद जो सत्ता परिवर्तन का सिद्धांत आया तो वो क्या कौन लोग थे? जो वियतनाम की तबाही हुई उस वक्त कौन की प्रेसिडेंट था? क्या वो कैनेडी नहीं थे? उसके बाद जॉनसन नहीं थे? क्या उनके सलाहकार बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट नहीं थे जिस मुहावरे का उल्लेख आज इन्होंने किया? मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शख्सियत पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं जितना इस पर है कि अमेरिकी समाज क्या है, अमेरिकी मतदाता का आज सोच क्या है और अमेरिकी नागरिक कितने अपने राष्ट्रहित में अपने स्वार्थ के लिए खुदगर्ज हैं कि 20 साल का नौजवान गोरा कोयले की खान में काम करने वाला इसलिए अपना मसीहा समझता है इनको डोनाल्ड ट्रंप को कि वो कहते हैं मैं यहाँ रोज़गार बढ़ाऊँगा, मैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारूंगा। तो भारत में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खस्ता हाल है, यहाँ तो आप बेरोज़गार आदमी को रोज़ी रोटी दिलाने के लिए मनरेगा कर सकते हैं, मगर ये क्या होने वाला है वहाँ अमरीका में?
बिल्कुल सही आपने फरमाया, इस पर चर्चा जारी रहेगी। दुनिया भर के नेताओं ने नए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करने का वादा किया है, हालांकि स्थापित व्यवस्था में संभावित परिवर्तनों को लेकर कई चिंताएं भी जाहिर की गई हैं, खासतौर से यूरोप में। अमर शर्मा की रिपोर्ट।
यूरोपीय संघ के दो बड़े अधिकारियों डोनाल्ड टस्क और जियां क्लॉद यूंकर ने साझा रूप से ट्रंप को उनकी सहूलियत के मुताबिक जल्द से जल्द एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथ, यूक्रेन की संप्रभुता को खतरा और जलवायु परिवर्तन जैसे ट्रांस एटलांटिक क्षेत्र के संबंधों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन स्कल्ज ने जर्मन टेलीविजन से कहा कि उन्हें लगता है कि यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच रिश्ते मुश्किलों से भरे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करेंगे।
बहुत से लोगों की तरह मुझे भी यही उम्मीद थी कि हिलेरी क्लिंटन जीतेंगी, लेकिन रात में ही ये स्पष्ट हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिलेगा और ये अब उन्हें मिल गया है। मुझे इससे खुशी नहीं मिली है, लेकिन वो अमेरिका के स्वतंत्र रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो भी हमारा सम्मान करेंगे।
यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन स्कल्ज के शब्द। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने ट्रंप को बधाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप जर्मनी के साथ सहयोग करेंगे ताकि दोनों देशों के साझा मूल्यों को सुरक्षित रखा जा सके।
Wer dieses große Land regiert mit seiner gewaltigen wirtschaftlichen Stärke, seinem militärischen Potenzial.
अमरीकियों ने तय किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगले 4 सालों तक ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जर्मनी और अमरीका का रिश्ता लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानवीय अधिकार और गरिमा के लिए इज्जत जैसे मूल्यों से जुड़ता है। भले ही लोगों की उत्पत्ति, त्वचा का रंग, धर्म, लिंग और यौन रुझान या राजनीतिक विचार कुछ भी हों, इन्हीं मूल्यों के आधार पर मैं अमरीका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी सहयोग की पेशकश करती हूँ।
जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकवा ओला ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी और हार गई हिलेरी क्लिंटन के साथ संवेदना व्यक्त की है। ओला ने अमेरिका को फ्रांस का पहला दर्जे का साथी बताया है, हालांकि उन्होंने चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई, मध्य पूर्व के हालात, आर्थिक संबंधों और पृथ्वी को सुरक्षित बनाने के मुद्दों को दांव पर लगे मुद्दे बताया है। मॉस्को में विदेशी राजदूतों को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। पुतिन ने मॉस्को और वाशिंगटन के बीच अच्छे संबंध कायम करने की इच्छा जताई।
रूस अमेरिका के साथ पूर्ण विकसित संबंधों को बहाल करना चाहता है। मैं दोहरा रहा हूं कि हम जानते हैं कि ये कठिन रास्ता होगा, लेकिन हम अपनी भूमिका निभाने और रूस अमेरिकी संबंधों के स्थिर और सतत विकास के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इससे रूस और अमेरिकी लोगों के लिए फायदा होगा।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी है।
दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं डेलावेयर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुख्तदर खां। प्रोफेसर साहब, आप इस परिणाम की उम्मीद कर रहे थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 बजे तक रात के मैं यही उम्मीद कर रहा था कि नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन शायद हिलरी क्लिंटन की कैंपेन को बचा लेंगे, लेकिन अमेरिका इस मूड में नहीं था। अमेरिका चाहता है कि सियासी तब्दीली हो और अब देखें क्या होता।
क्या आपकी नज़र में क्या वजह रही हिलरी क्लिंटन के हारने की?
कई चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती डेमोक्रेटिक पार्टी की ये थी कि उन्होंने हिलरी क्लिंटन को इलेक्शन से पहले ही क्राउन कर दिया और दूसरे कैंडिडेट्स ने कम्पीट नहीं किया। आपको याद होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के 16 उम्मीदवार थे और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कोई नहीं हिलरी के अलावा। बर्नी सैंडर्स ने जो कंटेस्ट किया वो डेमोक्रेट थे ही नहीं। जो बाइडेन जैसे अगर कैंडिडेट्स अगर इस रेस में होते तो शायद वो बेटर परफॉर्म करते। हिलरी के साथ काफ़ी बर्डन था। दूसरी चीज़ ये है कि हिलरी जो मतलब ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी कि अमेरिका एक फीमेल प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते, लेकिन वो जो है सो जो अनएजुकेटेड यानी नॉन कॉलेज एजुकेटेड वाइट तबका है जो जिन्होंने हाई स्कूल के बाद तालीम छोड़ दी, उसने मतलब वो औरतों का भी वोट हासिल नहीं कर सकी। वाइट वुमेन का सिर्फ माइनॉरिटी वोट्स और एजुकेटेड वाइट वुमेन के वोट्स उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। वाइट मैन
प्रोफेसर साहब ये बताएं, तीनों डिबेट के बाद ये कहा गया कि क्लिंटन का एज रहा, तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि अब डिबेट वगैरह माने नहीं रखते इस तरह के इलेक्शंस में?
नहीं, देखिए कि एक तो एक अमेरिका में पिछले कई सालों से एक किस्म से पॉलिटिकल एपथी रही, यानी 60-65% वोटर टर्नआउट था। इस बार काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट था। इस बार रूरल अमेरिका में काफ़ी लोग जो नॉर्मली इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते वो लोग सामने आकर वोट डाले। दूसरी चीज़ ये है कि कई ऐसे लोग थे कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल कैरेक्टर के बारे में कई महीनों से कहा गया कि आते ये बिगट हैं और ये रेसिस्ट हैं और ये औरतों के खिलाफ हैं और इनका जो मतलब पर्सनल कैरेक्टर है वो बहुत ही घटिया सा पेश किया गया मीडिया में, तो इसमें काफी एजुकेटेड पढ़े लिखे वाइट तबका इस अमेरिका का जो अमेरिका की यूं कहिए कि कल्चर जो बदल रहा है अमेरिका का और रेशियल कॉम्पोजिशन जो बदल रहा है, उन्होंने शायद पोल्स में ये साबित नहीं किया कि वो ट्रंप को वोट डालेंगे, लेकिन अंदर जाकर इलेक्शन में डाले। ट्रंप की कैंपेन ने कई बार ये बात कहा कि देयर आर हिडन ट्रंप वोटर्स।
जी, समय समाप्त हो रहा है प्रोफेसर साहब, जल्दी से अपनी बात समाप्त करिए, बहुत कम समय बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मुख्तदर खां। पुष्पेश जी, आखिरी वर्ड आपका, आप क्या कहेंगे? ये जिस तरह से तमाम मीडिया की भविष्यवाणी गलत हुई, ओपिनियन पोल गलत साबित हुई, सेफोलॉजी की जो कला है ये उतार पर है?
नहीं, देखिए सेफोलॉजी की कला उतार पर नहीं है, मगर सेफोलॉजी को जो विज्ञान बताया जा रहा था वो दावा झूठ साबित हो गया, और जो मीडिया का अहंकार था कि मीडिया अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करता है वो झूठा साबित हो गया। और आपने जो बड़ी मज़ेदार बात उठाई कि जो हम ये मानते हैं कि जब बहस होती है तो तर्क हावी होता है भावावेश पर, वो शायद गलत साबित हुआ कि हम लोग अपने दिल से वोट करते हैं, दिमाग से नहीं, वो हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में भी।
और बहुत संक्षेप में अगर आपसे कहा जाए ट्रंप और नरेंद्र मोदी में तुलना की जाए, क्या समानताएं देखते हैं आप?
जब ट्रंप ये कहने को मजबूर हुए, चाहे हिंदुस्तानी लोगों को ही संबोधित करते हुए, कि इस बार ट्रंप सरकार, तो आप समझ सकते हैं कि उनको एक साम्य नज़र आता था।
बहुत खूब, और इसी के साथ समय आ पहुंचा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, लेकिन सभा के अंत में एक नज़र दौड़ाते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति चुनाव के अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर किया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि ट्रंप की जीत एक अनिश्चितता लेकर आई है जिसके लिए पूरे यूरोप को एक होना होगा जिससे उनकी बात सुनी जाए। काले धन के खिलाफ मंगलवार रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद आज भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लोग स्रोत बताकर जितना चाहें बैंकों में पैसा जमा करा सकते हैं। गुरुवार से भारत के लोग अपने पुराने नोट बैंकों में जमा करवाकर 2000 और 500 के नए नोट ले सकते हैं। चीन की अदालत ने पिछले साल एक वेयर हाउस में हुए धमाके के आरोप में केमिकल फैक्ट्री के प्रमुख को मौत की सजा दी है। ताइजिन में हुए इस जहरीले धमाके में 170 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर फायर फाइटर्स और पुलिस वाले थे। सूडान की विपक्षी पार्टी का कहना है कि उनके नेता को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पिछले दो दिनों में दसियों वरिष्ठ विपक्षी लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।